ओम शांति। किसी एक देश के राजा ने अपनी इकलौती कन्या राजकुमारी के लिए एक बहुत सुंदर हार बनवाया, हीरो का हार, और राजकुमारी को वो दिया और उस राजकुमारी को वह हार बहुत पसंद आया। वो दिन रात उस हार को पहने रहती, उसको देखती रहती और उसको बहुत प्यार हो गया उस हार से। परंतु एक दिन अचानक जब वो राजकुमारी उठी नींद से तो देखा कि वो हार है ही नहीं, वो हार चोरी हो गया है। चारों तरफ ढूंढा परंतु राजमहल में वो हार था ही नहीं। यहां वहां सैनिक दौड़े ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। किसी ने कहा हो सकता है किसी पक्षी ने वो हार उठाकर कहीं फेंक दिया। राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी इस हार को ढूंढ लेगा उसे 50,000 रुपये इनाम दिए जाएंगे। कई लोगों ने प्रयत्न किए परंतु किसी को वो हार ना मिला। एक दिन उस राज्य के एक रास्ते से एक नवयुवक जा रहा था और बाजू में ही एक गंदा सा तालाब था और इस युवक ने वो घोषणा सुन रखी थी। और जैसे ही वो तालाब को देखता है उसे दृष्टिगोचर होता है एक चमकती हुई वस्तु। हो ना हो उसे लगता है यही वो हार है राजकुमारी का जो खो गया है। वो उस कीचड़ वाले गंदे तालाब में हाथ डालता है पर जैसे ही हाथ डालता है कुछ भी हाथ में नहीं आता। फिर बाहर आता है, देखता है वो वस्तु अब भी चमक रही है और वही हार है। वो थोड़ा सा उस तालाब में उतरता है, फिर हाथ डालता है, दोनों हाथ पटकता है पर हाथ में कुछ भी नहीं कीचड़। फिर बाहर आता है, फिर देखता है अब भी वस्तु चमक रही है। फिर तो पूरा ही कूद जाता है उसने, सब जगह ढूंढता है आगे पीछे दाएं बाएं, परंतु वो हार तो है ही नहीं। उतने में सामने से एक योगी, एक सन्यासी आता है। सन्यासी देखता है ये युवक परेशान है। सन्यासी पूछता है क्या हुआ, क्यों परेशान हो? परंतु ये युवक कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही, क्योंकि ऐसी बातें बताई नहीं जाती। क्या पता साधु है पर दिमाग घूम जाएगा हार की बात सुनकर, इसलिए वो साधु से कहता है कुछ नहीं है। साधु कहता है बताओ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तो वो सारा वृत्तांत बताता है। इस देश का राजा, उसने हार दिया, बेशकीमती हार, और राजकुमारी के द्वारा वो हार खो गया। जो ढूंढ कर देगा उसे पारितोषिक। और मैं देख रहा हूं हार सामने है तालाब में पर हाथ में कुछ भी नहीं आता, कितनी बार कोशिश की, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वो साधु कहता है हाँ, वो हार तालाब में नहीं है, ऊपर झाड़ पे लटका हुआ है। जिसे तुम पकड़ रहे हो वो क्या है? प्रतिबिंब है केवल। जो रियल है, जो वास्तविक है, जो असली है, वो ऊपर है, और जो नीचे है, जो दिख रहा है, जो दृष्टिगोचर है, वो प्रतिबिंब मात्र है, जिसे हम सुख कहते हैं। वो वास्तविक सुख ऊपर लटका हुआ है झाड़ पर, और जिसको हम पकड़ रहे हैं वो सारे इंद्रिय सुख, वो कीचड़ है, केवल केवल प्रतिबिंब है। जिसे हम समझते हैं खुशी है, वो ऊपर है वास्तविक, और नीचे जिसे हम पकड़ रहे हैं वो खुशी नहीं, वो दुख है। जिसे हमने पकड़ रखा है दैट इज अनरियल, असार। सार जो है वो ऊपर है। हम क्या पकड़ रहे हैं सुबह से लेके रात तक? अमृत वेला उठे, योग किया, क्या अनुभव हुआ? वास्तविक वस्तु तो ऊपर है, नीचे तो केवल प्रतिबिंब था। जो हमने पकड़ा शायद वो वास्तविक नहीं था। रियल एक्सपीरियंस, सच्चा अनुभव तो ऊपर ही लटका रहा, और हमने जो नींद में और आलस्य में और अलवेलेपन में और व्यर्थ में जो अमृत वेला किया उसमें कुछ भी नहीं पकड़ा। और मुरली चल रही है, क्या हमने पकड़ा? केवल प्रेजेंट ही लगा दी। जो रियल अनुभव था वो तो ऊपर है। जो भोजन खा रहे हैं, जो सारी दिनचर्या हो रही है, उसमें हम क्या पकड़ रहे हैं? शायद असली वस्तु तो ऊपर ही रह गई, और जो हमने पकड़ा वो प्रतिबिंब मात्र है। उस सत्य को पकड़ना, उस रियल को पकड़ना, उस सार तत्व को पकड़ना, और पकड़े ही रहना, ये ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। तो इस ब्राह्मण जीवन में बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी नियम और मर्यादाएं हैं। बाबा हमें संसार के लोकलाज और संसार की मर्यादाओं से छुड़ाकर ईश्वरीय लोकलाज, ईश्वरीय मर्यादाओं में बांधते हैं, क्योंकि ये मर्यादा है, ये भी एक बंधन है, पर ये वो बंधन है जो संसार के सभी बंधनों से मुक्त कर देता है। क्योंकि स्वयं ईश्वर द्वारा बताए गए हैं। आज तक ऐसे नियम, ऐसी मर्यादाएं किसी ने नहीं समझाई। संसार में भी अध्यात्म तो है, द्वापर से धर्म है, साधनाएं हैं, उसमें भी नियम है, उसमें भी मर्यादाएं हैं, परंतु व्यक्ति फिर भी भटक गया। रावण खुद भटकता है, दूसरे को भटकाता है। सुबह की मुरली, दो मार्ग है संसार में, एक भोग का मार्ग है, एक त्याग का मार्ग है। दोनों ही मार्ग में व्यक्ति दुखी हुआ। बीच में भोग, एक भोग का मार्ग जिसमें व्यक्ति भोग में डूब गया, बस यही सब कुछ है, खाओ पियो मौज करो, परंतु इन भोग में डूब डूब कर उसकी सारी ऊर्जा शक्ति क्षीण हो गई। और भोग इतने सस्ते भी नहीं है, साथ में बीमारी को लाते हैं। दूसरा मार्ग है सब कुछ छोड़ने का, परंतु वो छोड़कर भी बुद्धि सारी वही रही। एक सीधा खड़ा है, एक ने शीर्षासन किया है, एक भोगी है और एक त्यागी है। दोनों की ही बुद्धि भोग में ही अटकी रही, एक इसलिए क्योंकि उसमें डूबा है, एक इसलिए क्योंकि उसने छोड़ा है। जो छोड़ा है उसी का चिंतन चल रहा है, इसलिए दोनों ही मार्ग गलत सिद्ध हुए। भगवान ने आकर एक बीच का मार्ग बताया है और उस मार्ग का नाम है ज्ञानमयी प्रेममयी समझ, अंडरस्टैंडिंग। चीजों को वैसे ही समझना है जैसी वो है, ना अति ऊंचम ना अति नीचम। एक्सट्रीम में जो भी गए हैं दुखी हुए हैं, इसके लिए बीच का मार्ग बाबा ने आकर बताया है। तो इस ब्राह्मण जीवन में वो कौन कौन सी मर्यादाएं हैं, वो कौन कौन से नियम है, कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट, डिक्टेट्स, डिवाइन कमांडमेंट्स, वो कौन से रूल्स रेगुलेशंस, कौन से नियम नियमावली है, वो जानना बहुत जरूरी है। आप में से सब, अधिकतर सब जानते हैं, परंतु जो नियम होते हैं उनको बार बार रिवाइज करना होता है। और आज की इस क्लास में इस ब्राह्मण जीवन के हम ऐसे 26 नियम देखेंगे, उसमें से एक एक नियम इतना महत्वपूर्ण है। जैसे मुरली के लिए कहा जाता है, मुरली वो आम है जिसमें गुठली नहीं है और छिलका भी नहीं है, बिन गुठली और बिन छिलके का आम, त्यज कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि मुरली की ये पॉइंट कम महत्वपूर्ण है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा की, मुरली वो लाठी है जिसको पकड़ पकड़ कर तुम परमधाम जाते हो और फिर सतयुग में अवतरित होते हो। तो ये सारे नियम बार बार रिवाइज करने हैं, क्यों? ताकि बार बार जब किसी चीज की पुनरुक्ति होती है तो अवचेतन मन में वो समा जाता है और हमारे जीवन का वो हिस्सा हो जाता है। बाप उनसे प्यार करता है जिन्होंने श्रीमत को अपना जीवन बना लिया है। बाबा के महावाक्य है, जो इन नियमों का पालन करते हैं वो सुनते सुनते उसको मन ही मन रिवाइज करे और पक्का करे। जो इनका पालन नहीं करते हैं वो यहीं पर बैठे बैठे, अभी इसी सभा में, इस पवित्र वातावरण में बैठकर मन ही मन संकल्प कर ले कि कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है। क्योंकि इनमें से कुछ भी अगर नहीं कर रहे तो हमेशा से अंदर से दिल खाती रहेगी, गिल्ट कॉन्शियसनेस, अपराध भाव रहेगा। और जैसे सुबह एक बात बताई, अपराध से भी बड़ा अपराध कौन सा है? अपराध को छिपाना। और ये नियम ऐसे है कि जब हम ईश्वरीय नियमों का पालन करते हैं तब भी संसार के लोग कुछ ना कुछ टोकते हैं, कहते हैं, और जब नहीं कहते तब भी टोकते हैं। ज्ञान में चलते हैं तो विरोध करते हैं, ज्ञान अगर छोड़ दे तो भी हंसी उड़ाते हैं। इसके लिए लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। वो जो हंसी की कहानी सुनाते हैं, शंकर जी और पार्वती, वो नंदी बैल को लेकर जा रहे हैं, लोग कहते हैं कैसे मूर्ख दाम्पत्य, बैल होते हुए भी पैदल जा रहे। शंकर जी को लगता है बात तो सही है, दोनों बैठ जाते हैं बैल के ऊपर। आगे पहुंचते हैं, दूसरे गांव वाले कहते हैं ये मूक प्राणी कुछ कहता नहीं, इसलिए कैसे भी अत्याचार करोगे उनके ऊपर, उसके ऊपर, बेचारा बैल। और दोनों बैठ गए, वो दोनों उतरते हैं और शंकर जी कहते हैं पार्वती को तुम बैठ जाओ। आगे बढ़ते हैं, दूसरे गांव वाले कहते हैं कैसी स्त्री है, पति परमेश्वर होता है और पति पैदल चल रहा है और खुद बैठी है। अरे अरे अरे, कलयुग, घोर कलयुग। शंकर जी खुद बैठ जाते हैं, पार्वती चलने लगती है। वर्ष पार्वती बैठती है, शंकर जी चलने लगते हैं। लोग कहते हैं, सॉरी उल्टा, लोग कहते हैं अपनी धर्म पत्नी को चला रहा है और खुद बैठा हुआ है, शंकर जी बैठे हैं उसको कहते हैं। अब दोनों को यह समझ नहीं आता है क्या किया जाए। दोनों उस बैल को पकड़ लेते हैं, सामने से दो टांगे और वो दो टांगे, और चलने लगते हैं। लोग कहते हैं कितने मूर्ख लोग हैं, बैल होते हुए भी पकड़ के चल रहे हैं। चाहे कुछ करो या ना करो, दुनिया वाले कुछ ना कुछ कहेंगे। नीचे देख के चलो तो लोग कहते हैं इनका तो ऊपर ध्यान ही नहीं है, ऊपर देख के चलो तो कहते हैं जमीन पर भी नजरें टिकाओ, सीधा देख के चलो तो कहते हैं आजू बाजू भी देखा करो क्या हो रहा है दुनिया में, आजू बाजू देखो तो कहते हैं इनकी आंखों का ठिकाना नहीं है, और आंखें फोड़ लो तो कहते हैं कर्मों का हिसाब। इसके लिए चाहे कुछ करो या न करो, दुनिया वालों को कुछ ना कुछ कहना है। इसके लिए दुनिया को जो कहना है कहने दो, हमें वो करना है जो भगवान ने कहा है। कल भी सुना रहे थे, कुमार कुमारिया बाप से कहती है बाबा क्या करे, माता पिता कहते हैं शादी करो। बाप कहते हैं साकार महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, बाप कहते हैं बाप की याद में यदि सर भी कट जाए तो उच्च पद पाओगे, पर नरक में मत जाना। इसलिए ये सारे नियमों को रिवाइज करेंगे आज। सबसे पहला नियम, अमृत वेला। अमृत वेला, जिसका रोज अमृत वेला मिस हो रहा है, धीरे धीरे आत्मा में शक्ति कम होती जाती है। जिसका रोज अमृत वेला उठ तो रहे है परंतु सारा नींद में जा रहा है, व्यर्थ में जा रहा है, या कम शक्तिशाली हो रहा है, साधारण सा हो रहा है, शक्ति कैसे भरेगी। साकार महावाक्य है बाबा के, अमृत वेला स्वयं को परमात्म प्रेम से इतना भर दो, इतना भर दो कि सारे दिन भर फिर किसी का भी प्रेम आकर्षित नहीं करेगा, नहीं तो देहधारी खींचेंगे। इतना प्रेम से भर दो, इतना प्रभु प्रेम से भर दो, ऐसे बाप को याद करो कि तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाए प्रेम के। जगदीश भाई जी ने अनुभव कई बार सुनाया है, भारत के चीफ जस्टिस कृष्णा अय्यर पांडव भवन में आते थे, इंद्रप्रस्थ में रहते थे, उनको कॉन्शियंस कीपर ऑफ इंडिया कहा जाता था। अभी अभी शरीर छोड़ा कुछ साल पहले, 100 के ऊपर उम्र थी, 84 किताबें लिखी है उन्होंने लॉ के ऊपर। वो मधुबन आया करते थे, और जब मधुबन आते थे और उनको कल्चरल प्रोग्राम में बुलाया जाता था, वो बीच से उठ के चले जाते थे, कहते थे माफ कर दो, क्योंकि उनका नियम था सुबह 2 बजे उठने का। वो लौकिक व्यक्ति लौकिक कार्य करने के लिए, संसार की किताबें लिखने के लिए सुबह 2 बजे का जो नियम था उसको तोड़ता नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहता था मुझे 9 बजे सोना है, निकल जाता था और सो जाते थे। एक व्यक्ति संसार की साधना कर रहा है, संसार में कुछ देने की कोशिश कर रहा है लौकिक रीति से, वो भी अपने नियमों का इतना पक्का है, और हम क्यों नहीं है फिर। मनमोहिनी दीदी ने, बाबा बहुत बीमार थे, शुगर बहुत बढ़ गई थी, बीपी भी कम ज्यादा था, डॉक्टर आए और डॉक्टर ने बाबा को चेक किया और डॉक्टर ने कहा कि सुबह आप बहुत जल्दी उठते हैं, थोड़ा आप देरी से उठा करो। बाबा ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। मनमोहिनी दीदी आई, मनमोहिनी दीदी ने समझाया, दीदी ने कहा बाबा डॉक्टर ने कहा है, बाबा ने कहा मैं इस डॉक्टर का सुनूं या उस डॉक्टर का सुनूं, फिर भी दीदी नहीं मानी, दीदी ने कहा बिल्कुल आपको आना ही नहीं है अमृत वेला। तो लास्ट में बाबा ने कहा चलो ठीक है देखते हैं, और दूसरे दिन अमृत वेला जैसे ही चालू हुआ बाबा वो शॉल ओढ़कर चुपके से पीछे आके बैठ गए। तैतीस साल का पुरुषार्थ तब जाके संपन्न बने, एक दिन का पुरुषार्थ नहीं है। 33 ईयर्स के पुरुषार्थ में एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया। वो ब्रह्मा जो 93 एज में भी इतना एक्टिव, ना चश्मा ना झुक के चलना ना और तेज तेज चलना, उससे ये पता चलता है उस व्यक्ति ने अपना जीवन कितना नियमों से बिताया था, कितना स्ट्रिक्ट रहा होगा वो व्यक्ति अपने साथ। और यदि हम अमृत वेला उठ तो रहे कभी लेट कभी जल्दी, कभी कौन से टाइम कभी कौन से टाइम, अमृत वेला की एक किताब है, कितने लोगों ने पढ़ी है हाथ खड़ा करेंगे, यज्ञ के अमृत वेला की किताब है एक, तो बहुत ही कम लोग हैं। तो सबसे पहला काम आपको होमवर्क दे रहे अभी, अगले एक मास तक ये किताब को पढ़ना है डेली। जिनके पास नहीं है वो ले ले, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है सब जगह, वेबसाइट पे जाएंगे तो सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, हार्ड कॉपी भी इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, दोनों सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल है। पर अगर मधुबन कोई गया हो तो मंगा ले, और रोज इस किताब को पूरा करना है पढ़ना है। उसमें बाबा के डायरेक्ट महावाक्य अमृत वेले के लिए, अमृत वेले की समस्याएं क्या क्या, अमृत वेले क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, अमृत वेले शक्तिशाली कैसे बनाए, अमृत वेले के कौन कौन से नियम है, अमृत वेले कौन कौन से अभ्यास करे। हर दिन का अमृत वेला नया हो, वही 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 नहीं जो कमेंट्री 10 साल पहले सुनी थी, मैं आत्मा हूं और मुझसे शक्तियां बह रही है, बस वही चालू है अभी तक, उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, और कमेंट्री पूरी। हर दिन अमृत वेला नया हो, हर दिन नया अभ्यास हो, हर दिन शक्तिशाली हो, पावरफुल हो। दिनचर्या की शुरुआत पर सारा दिन निर्भर करता है। अव्यक्त महावाक्य बाबा के इन्वर्टेड कॉमा अमृत वेला, अपनी गाड़ी को पटरी पर डाल दो, अपने आप दिन भर चलेगी। कब कब समझाते रहोगे अपने मन को ये श्रीमत है या नहीं है, अपने आप पता चल जाएगा। सुबह केवल डाल दो, अपने आप चलेगी। तो जिन्होंने वो किताब नहीं पढ़ी है, सबसे पहला काम करेंगे कल से वो किताब लेंगे और उसको रोज पढ़ना चालू करेंगे। सुबह थोड़ा पढ़ेंगे, फिर शाम को पढ़ेंगे, फिर सुबह पढ़ेंगे, फिर शाम को पढ़ेंगे, बीच बीच में समय मिला तो भी पढ़ेंगे, कई बार पढ़ना है, ताकि एक दिन भी मिस ना हो। क्योंकि रोज रोज अमृत वेला मिस होने के बाद कितना दुख होता है, ये शायद हर एक ने अनुभव किया होगा, क्योंकि वो फर्स्ट श्रीमत है दिनचर्या की, उसी को तोड़ दिया। मम्मा किसी कारण से 11 बजे तक गेस्ट के वजह से जागी, पर उसका नियम था 2 बजे उठने का, फिर भी 2 बजे उठी। दूसरे भाइयों ने कहा, बहनों ने कहा, मम्मा आप रात को 11 बजे सोई हो, आप आज के दिन तो थोड़ा लेट उठ सकती थी। मम्मा ने कहा मैं पहले ही एक श्रीमत तोड़ चुकी हूं, दूसरा नहीं तोड़ सकती। और अमृत वेला जल्दी उठने की विधि कौन सी है? जल्दी सोना। अमृत वेला शक्तिशाली करने की विधि क्या है? जल्दी सोना। और रात को ही तो सबसे ज्यादा टेम्पटेशन होते हैं सोने के पहले, डिजिटल आकर्षण। अगर अतीन्द्रिय सुख चाहिए तो ये छोड़ना पड़ेगा। अतीन्द्रिय सुख इतना सस्ता नहीं है कि हर एक को मिल जाए, बिना त्याग के कुछ भी नहीं मिलेगा यहां पर। और भयंकर नींद, नींद में ही अमृत वेला हो जाता है पूरा। और 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट, 5 मिनट करते करते 5 बज जाते हैं। कुछ दिनों पहले स्लोगन था, परमात्मा प्रेम वो अलार्म है जो सुबह अमृत वेले उठाता है। वो अलार्म तो धोखा दे सकता है, ये नहीं धोखा देगा। सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है कि रात को उसको अगर ऑर्डर कर दिया जाए कि तुम्हें इतने बजे उठना है, अपने आप वो मानेगा। एक कुमार था जिसकी आदत थी कि जैसे ही अमृत वेले का अलार्म बजता था 4:15 बजे, अपने आप हाथ रजाई से निकलता था और बंद कर देता था, अपने आप ऑटोमेटिक क्रिया। अलार्म बजा, हाथ निकला, बंद। उसने सोचा कुछ करना चाहिए, रोज मुरलियों में आता है। उसने क्या किया, अलार्म घड़ी जो थी बाजू का जो बेड था उसके नीचे रख दी, ताकि उठूं, फिर घुसूं, फिर बंद करूं, तब तक तो नींद खुल जाएगी। सो गया। दूसरे दिन जोर से अलार्म बजा, हाथ गया, अरे पता चला वहां तो है ही नहीं। फिर उठा, रजाई एक तरफ, बेड के नीचे घुसा बाजू वाले, उसको बंद किया और वहीं सो गया। फिर अलार्म भी धोखा दे देता है। और नींद, भयंकर नींद, अगर नींद पूरी नहीं हो रही है उसका कारण अमृत वेला शक्तिशाली नहीं हो रहा है, तो शायद नींद नहीं पूरी हो रही है। नींद हो रही है पर बहुत लेट सो रहे हैं, रिफ्रेशिंग नहीं है, इसलिए झुटके आते रहते हैं। अमृत वेला, माताओं की भट्टी थी बीच में पांडव भवन में, रतन मोहिनी दादी जी अमृत वेला करा रही थी, सारी माताएं सो रही थी। दादी ने 4:30 बजे व्हाइट लाइट करा दी और कहा सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, अब बैठो, लाइट वापस रेड। नींद आती है भयंकर। हमारी एक डॉक्टर है जो काफी अपना अनुभव सुनाती है, पहले मधुबन में थी, अभी बाहर जॉब करती है। तो वो जब भी मधुबन में आती है ऐसा नशा चढ़ता है कि 2 बजे उठना है। उधर तो अमृत वेला कभी किया कभी नहीं किया, पर मधुबन में एक्स्ट्रा पावर आ जाती है। तो एक बार अनुभव सुनाया उसने, सुबह सुबह उठ गई 2 बजे, बाबा की कुटिया में बैठ गई और देखा तो 2 बज रहे थे, और जब अगली बार देखा तो 5 बज रहे थे। बीच में क्या हुआ पता ही नहीं, कैसे बीत गए 2-3 घंटे कुछ खबर नहीं। और बीच में झटके लगे 2-3 बार, और व्यक्ति को जब झटका लगता है तो सबसे पहला काम क्या करता है, किसी ने देखा तो नहीं, तो उसको झटका लगा जोर से और देखा कि 5 बज गए। और उसको एकदम से लगा पीछे चेयर पर कुटिया में कुछ लोग बैठे हैं, शायद उन्होंने देख लिया है। एकदम बेचैनी हुई कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे अब मेरे बारे में। तो उसने पीछे मुड़कर देखा, 5 माताएं बैठी थी सोफा पर, 5ों के 5ों सो रही थी। तब कहीं जाके चैन मिला कि अभी कुछ नहीं, हमारे योगी बने का स्टेटस कायम है अभी। हर एक को चिंता होती है ना, लोग क्या सोचेंगे, अमृत वेला सोता है। ब्राह्मणों को 3-4 जगह पर नींद आती है, एक अमृत वेला, दूसरा मुरली, तीसरा क्लास चालू है किसी का उसमें नींद, और चौथा वो जो सबसे महान महारथी है, डिस्कशन चालू है उसमें सो जाते हैं। सब लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी सो जाते हैं। मनोर इंद्रा दादी एक बार मेडिटेशन हॉल में मुरली सुना रही थी, तीन चार माताएं थी, पूरी सो रही थी। दादी ने कहा उठो सबके सब, पीछे जाके खड़ी हो जाओ दीवार पर। पर माताएं ऐसी पावरफुल थी और इतनी महारथी थी कि खड़े खड़े सोने चालू कर दिए। नींद का महाप्रकोप, भयंकर प्रकोप। मधुबन में एक भाई है, उसने अपनी डायरी दिखाई एक बार। इतनी नींद आ रही थी मुरली सुनते समय और लिख रहा था, और जब देखा क्या लिखा, गोल 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 सारा। उसे भी समझ में नहीं आ रहा ये मैंने लिखा क्या, क्योंकि नींद में आंखें खोल कर नींद, आंखें खुली है पर नींद। तो सबसे पहला नियम है जल्दी सो जाना। रात के सोते समय का अंतिम संकल्प सुबह उठते ही प्रथम संकल्प बन जाता है। टीवी देखते देखते सो रहे, मोबाइल ऑन करते करते, खेलते खेलते सो रहे, कॉल करते करते सो रहे, सोशल मीडिया में लगे हुए, कैसे उठते ही परमात्मा संकल्प आएगा। जल्दी सो जाना, इसको थोड़ा सा ऑफ कर देना सोने से पहले, जिनको कोई इमरजेंसी नहीं है वो दूर कर दे शरीर से। बाबा की याद में चार्ट देख करके सोना, ताकि उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग, उठते ही अनुभव करना कि उसने अपना वरदानी हाथ सिर पे रख दिया है। उठते ही बिस्तर को छोड़ देना, बिस्तर को त्याग कर देना। बिस्तर के ऊपर अमृत वेला कौन कौन करता है? बिस्तर के ऊपर ही, वहां तो नींद आएगी बहुत, नींद के वाइब्रेशन है बिस्तर में। और कोई कोई भाई तो इतना गुप्त योग करते हैं कि रजई के अंदर ही अमृत वेला करते हैं, बाजू वाले को भी पता नहीं चले। कोई ढोंग आडंबर हमें पसंद नहीं है, कोई देखे नहीं, कोई ये ना कहे कि तुम दिखावा करते हो। इतना गुप्त पुरुषार्थी है, रजई ओढ़े हुए बाबा की याद में मगन है। कितना मगन है वो कोई नहीं जानता। एक बहन ने प्रश्न पूछा था, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, कि चार बज गए और मैं सो रही हूं पर बाबा के स्वप्न आ रहे हैं, बाबा दिख रहा है, अब मुझे उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? क्योंकि उठूंगी तो बाबा तो चला जाएगा, कि पकड़ के रहो, क्या करना चाहिए? इतना अच्छा स्वप्न दिख रहा है, इधर दिख रहे हैं चार बज रहे हैं पर इधर बाबा स्वप्न में है, ये भी माया है। अमृत वेले की सारी माया क्या क्या है व्यक्तिगत, उसकी लिस्ट बनानी है। क्यों नहीं उठ पाता, क्यों रेगुलर नहीं हो पाता, क्यों नींद आती है, क्यों व्यर्थ चलता है? व्यर्थ चलता है तो कुछ ढूंढना पड़ेगा, ज्ञान चिंतन बढ़ाना पड़ेगा। नींद आती है तो नींद का टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। अगर फिर भी नींद आती है तो उठते ही एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो। अगर फिर भी नींद आती है तो चलते फिरते अमृत वेला करो। फिर भी नींद आती है तो बाबा का ऑडियो वीडियो लगाओ। फिर भी नींद आती है तो अव्यक्त मुरली पढ़ो। कुछ तो करो, पर सोना नहीं है बस। सुबह की मुरली सब कुंभकर्ण की अज्ञान निद्रा में सोए है, बाप आए हैं तुमको जगाने, अब बच्चों जागो। तो सबसे पहला नियम जो इस भट्टी से पक्का करना है कल सुबह से ही, अमृत वेला। दूसरा नियम, 26 नियमों में से दूसरा नियम, ब्रह्मचर्य, जिसकी प्यूरिटी की हमने सुबह चर्चा की। जहां पर ब्रह्मचर्य बार बार खंडित हो रहा है किसी भी कारण से, जहां देह आकर्षित कर रहा है, वहां पर आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। दादियों ने कितना सहन किया, ब्रह्मा ने कितना सहन किया, क्यों इतने हंगामे हुए? ब्रह्मा बाबा को आकर लोगों ने कहा आपकी संस्था बहुत अच्छी है, अगर आप चाहते हो तो इसमें बहुत लोग आएंगे, केवल ये ब्रह्मचर्य वाला हटा दो थोड़ा सा, बस इतना हटा दोगे ना पूरी भीड़ लग जाएगी यहां पर। बाबा ने क्या कहा था, मुझे भेड़ बकरियां नहीं चाहिए, मुझे शेर शेरनियां चाहिए जो धाड़ लगाए पवित्रता की। प्यूरिटी सबसे बड़ा नियम है, सबसे बड़ी मर्यादा है। और बाबा केवल एक ही काम के लिए तो आया है इस धरती पर, वो क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब बात की बातें हैं। मैं आया हूं पतित को पावन बनाने। क्रोधी को पतित नहीं कहा जाता, लोभी को पतित नहीं कहा जाता, कामी को पतित कहा जाता है। पांचवी मंजिल से गिरना क्रोधी के लिए नहीं है, काला मुंह करना क्रोधी के लिए नहीं है। ये ईश्वरीय सभा है, इंद्र सभा है। द हाईएस्ट धारणा इस संस्था की ब्रह्मचर्य है। अगर वही डगमग है, वही हिल रही है, वही बार बार टूट रही है, संकल्प में, मन में, विचारों में, कल्पनाओं में, सेंशुअल फैंटेसीज, तो क्या कहेंगे। 15 नवंबर 2003 अव्यक्त मुरली। जरा सी अपवित्रता, सफेद कागज पर काला दाग है। ये मत कहना बाबा हमसे थोड़ा सा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत है। अब बाप बाप के रूप में है, फिर धर्मराज के रूप में होगा। सजा मिलेगी, और सजा कौन सी है ब्राह्मण जीवन में, स्थिति का गिर जाना ही सजा है। कोई धर्मराज नहीं बैठा है वहां पर दंडा लेकर, यहीं पर स्थिति का गिर जाना सजा है। मुरली में जा रहे हैं परंतु इंटरेस्ट नहीं है मुरली में, अमृत वेले में इंटरेस्ट खत्म हो गया, यही सजा है। विदेश की एक बहन जी ने बीच में अनुभव सुनाया था हॉस्पिटल में, एक भाई था विदेश में, बहुत अनन्य भाई, जिसने बहुत सारी सेवाएं की, सूत्रपात किया नई नई सेवाओं का, इनिशिएशन लिया, इनिशिएटिव लिया। एक दिन वो भाई सेंटर पर कम आने लगा, आता था तो बैठता था, छुपता बैठ के चला जाता था, इंटरेस्ट कम होते गया। उसको पूछा क्या हुआ, वो कहता था नहीं नथिंग, प्रोबेबली बाबा डजंट वॉन्ट मी टू वर्क एनी मोर, शायद बाबा नहीं चाहता मैं और सेवा करूं, ऐसे अलौकिक कारण देता था। एक दिन उसके साथ किसी बहन को बिठाया और पूछा गहराई से क्या कारण है, तब उसने बताया एक नई एडिक्शन यूट्यूब, वो सब देखना चालू कर दिया धीरे 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 धीरे, दिन भर थका हारा सेवा कर करके रात में वो देखता था, वो देखते देखते कभी 11 कभी 12 कभी 1 बजता था, और फिर कहां अमृत वेला रस आएगा, शरीर में रस उत्पन्न होने के बाद आत्मा में रस कहां से आएगा। स्वीकार तो किया उसने, बहुत बड़ी बात है ये भी। कल की मुरली में था, बाकी सब चीजें बताते हैं, काम विकार के बारे में लज्जा आती है। तो दूसरी धारणा, दूसरा नियम, दूसरी मर्यादा, दूसरा रूल, दूसरा रेगुलेशन इस यज्ञ का, इस संस्था का, इस स्कूल का, इस यूनिवर्सिटी का, इस परिवार का। 4-in-1 है ये, स्कूल है या यूनिवर्सिटी, यज्ञ है, परिवार है, संस्था है। ब्रह्मा कुमारीज इज 4-in-1। तो इस भट्टी से अपनी ब्रह्मचर्य की धारणा को फिर से मजबूत करना है। अब दूसरी किताब आपको बता रहे हैं जो सबको पढ़नी है, जगदीश भाई की लिखी हुई ब्रह्मचर्य सेलिबसी, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है, सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है, हार्ड कॉपी तो मधुबन से मिल जाएगी या सेंटर से। जिन्होंने नहीं पढ़ी है, विशेष सभी कुमार, सभी अधर कुमार रिवाइज करें। क्योंकि भोग के संस्कार बहुत गहरे हैं और भोग की स्मृतियां भी बहुत गहरी है। वासना की चक्की में पिसी है आत्मा 63 जन्म। इतना जल्दी विकार छोड़ेंगे नहीं। ब्रह्मचर्य साधना है, तपश्चर्या है, तप है, बल है। इस बल को इकट्ठा करना है। विवेकानंद को पूछा गया था, वो कैसे हुआ कि आपने बोला और उसका इतना प्रभाव हुआ, जबकि उस सभा में आपसे वृद्ध लोग बैठे थे, ज्ञानी लोग बैठे थे, उस सभा में इतने इंटेलेक्चुअल्स थे शिकागो में, फिर भी आपने केवल 10-15 मिनट बोला और उसका इतना प्रभाव क्यों हुआ? वो क्या सीक्रेट है? उन्होंने उत्तर दिया था, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ ब्रह्मचर्य। आई हैव नॉट अलाउड माई माइंड टू हैव अ सिंगल सेक्शुअल थॉट इन माई लाइफ। जहां ऐसी प्यूरिटी की धारणा होगी और ऐसा ब्रह्मचर्य होगा, वहां बुद्धि कुशाग्र होगी, स्थिति अचलडोल होगी, आत्मा निर्भय होगी, शब्दों में पावर होगी, तेज होगा, ओज होगा। सेकंड, तीसरी धारणा, तीसरा नियम, सेंटर एटमॉस्फियर, सेवा केंद्र का वायुमंडल। जिस सेवा केंद्र पर हम जाते हैं, ये नियम है सभी स्टूडेंट्स का। ये सारे 26 नियम उनके लिए है जो स्टूडेंट्स हैं सेंटर के। तीसरा नियम है, हमारा ये कर्तव्य है कि वहां के वातावरण को शक्तिशाली बनाना है। यदि हम वहां जाकर संसार की चर्चा करते हैं, लौकिक चर्चा करते हैं, तो हम वहां के वातावरण को दूषित कर रहे हैं और पाप सिर पर है हमारे। वहां जाकर बिजनेस की चर्चा, वहां जाकर पैसों की लेन देन, वहां जाकर पॉलिटिक्स की चर्चा, वहां जाकर संसार की चर्चा, संसार की बातें, लौकिक बातें, चाहे अंदर रहने वाले हैं या बाहर से आने वाले हैं, एक एक सेवा केंद्र मधुबन का प्रतिबिंब है। उसके वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना एक एक ब्राह्मण का कर्तव्य है। ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बाबा ने जगदीश भाई को 3 बातें बताई थी सेंटर के लिए, दिल्ली शक्तिनगर। पहला, सेंटर जो होगा किसी भी विकारी का एक पैसा उसमें ना लगे निर्माण के लिए। दूसरा, सेंटर की दीवार किसी भी विकारी के दीवार से टच ना करे। और तीसरा, यूनिवर्सिटी के सामने हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तीसरा नियम तो छोड़ दो, पर पहले जो 2 नियम है वो अब भी लागू होते हैं। जब इतना बाबा ने कहा है सेवा केंद्र के लिए और हम वहां जाकर अपने विकारी विचारों से उस सेंटर के वायुमंडल को धूमिल दूषित कर रहे हैं, तो बोझ हम पर है। एक एक सेंटर निर्विघ्न, एक एक बहन निर्विघ्न, एक एक सेवाधारी निर्विघ्न, एक एक भाई निर्विघ्न, एक एक कन्या निर्विघ्न, एक एक टीचर निर्विघ्न, एक एक जोन इंचार्ज निर्विघ्न, एक एक बाबा का संपूर्ण जोन निर्विघ्न, ये बाबा चाहते हैं। सब कुछ निर्विघ्न हो जाए तो तीसरा नियम है, वहां के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना, कमजोर नहीं करना। चौथा नियम, ड्रेस, कपड़े कैसे होने चाहिए? हमारे वस्त्र स्वच्छ होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट ना हो, ढीले हो, टाइट ना हो। जितने धर्म स्थापक है उन सब के कपड़े कैसे है? गुरु नानक, जीसस क्राइस्ट, ढीले ढीले कपड़े, अर्थात धर्म की साधना, योग की साधना। जो टाइट वाले हैं वो जल्दबाजी का प्रतीक है। जिसे देखकर किस में ये भाव आए ये देवी है, और जितना हो सके वाइट अगर है तो बहुत अच्छा। संसार की फैशन ये सब हमारे लिए नहीं है। हमारा सौंदर्य आत्मा का सौंदर्य है। डाय करते हैं बालों को, टैटू करते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, ये सारे जो संसार के फैशन है ये सब हमारे लिए नहीं है। गहने, रंग बिरंगी कपड़े, भड़काऊ कपड़े, ये किस लिए है? विनोबा भावे थे, वो ट्रेन से गुजर रहे थे, एक महिला बैठी थी, उसने गजरा लगाया था। गजरा पता है ना, गजरा। उस महिला को वो पूछते, क्या ये गजरा तुमको दिखाई देता है? क्या ये गजरा तुमको दिखाई देता है? वो कहती, नहीं। तो किस लिए पहना है? दिखावे के लिए, आकर्षित करने के लिए। और फैशन कौन करते हैं? लक्ष्मी नारायण को फैशन करने की जरूरत नहीं है, नेचुरली ब्यूटीफुल है। अर्थात जो ब्यूटीफुल नहीं है वो फैशन करते हैं। अर्थात जो कुरूप है उनको ज्यादा फैशन की आवश्यकता है। समझ में आया? हमारा ड्रेस सिंपल हो, जितना हो सके स्वच्छ हो, फटा हुआ ना हो, टाइट ना हो, स्त्रियों के बारे में पुरुषों जैसा ना हो, भड़काऊ ना हो, शरीर को ढके ऐसा हो, और दिव्यता झलके उसको देखकर। साकार मुरली के महावाक्य है, बाबा ने पारसी स्त्रियों को याद किया है। जिसने मुरलियां पढ़ी होगी सारी, साकार मुरलियां, उनको पता होगा एक ही बार 5 साल की मुरलियों में एक ही बार ये आया है। वो पारसी स्त्रियां जैसे चेहरे पर जाली लगा लेती है ताकि कोई उनके पीछे लट्टू ना हो जाए, ये साकार मुरली के महावाक्य है। तो ड्रेस नियम है हमारा, और जितना हो सके जब भट्टी में आते हैं, सेंटर पर आते हैं, कम से कम तब तो वाइट ड्रेस और बैच लगा के आना, क्योंकि हम रूहानी मिलिट्री है। संडे की मुरली, सेनापति बाप देख रहे हैं किसके पास कौन कौन से शस्त्र है, सेनापति बाप देख रहे हैं कौन कौन महावीर है, किस किस को चक्र मिला है, विजय चक्र। जो सुदर्शन चक्रधारी है उन्हीं को विजय चक्र मिलेगा। किसके पास कौन से शस्त्र है, उनके पास जो शस्त्र है वो शस्त्र सूक्ष्म है, शक्तिशाली है, एक बैठे एक जगह बैठकर वहां पर विनाश की किरणें फैलाते हैं। तुम अपनी रूहानी याद की शक्ति से याद की किरणें फैलाते हो और आत्माओं को टच करते हो। संडे मुरली थी ना, तो हम रूहानी मिलिट्री भी है। ये बैच शस्त्र है, शास्त्र है। लोग कोई कोई बैच पहनने से भी डरते हैं, इतना छोटा बैच लगाते ताकि दिखे भी ना, और कोई कहे बैच कहाँ है तो कहेंगे ये क्या है। दोनों तरफ से दोस्त लोग कहेंगे, अच्छा तुम ब्रह्मा कुमारी में जाते? कहाँ ब्रह्मा कुमारी, कहीं नहीं, नहीं हम नहीं ब्रह्मा, हमको तो पता भी नहीं। और कोई ब्राह्मण मिल गया, बैच कहाँ है, ये क्या है, छोटा सा बटन, छोटा सा बैच, शर्म आती है बैच पहनने। तो हमारा नियम है, ड्रेस है वाइट और बैच। और मधुबन में भी जाते हैं, तब तो पहनते हैं पर सेंटर पर कम पहनते हैं कभी कभी। और ये ड्रेस हमारा सुरक्षा कवच भी है। ये ब्रह्मा कुमार का ड्रेस पहनकर किसी पान की तपरी पर जाकर कोई खड़ा नहीं रह सकता है, या कोई सिनेमा हॉल में लग जाए बैच लगाकर लाइन में टिकट खरीदने के लिए, शर्म आएगी उसको खुद को? यह सुरक्षा कवच भी है। व्हाइट रंगों की दुनिया छोड़ चुके हैं। सुबह हमने अनुभव सुनाया था, हम जब मधुबन में पहली बार आए थे बाबा से मिलने, जो सुबह अनुभव सुनाया, जीन्स और टी शर्ट पहन के आए थे। और जिस दिन बाबा का मिलन था 30 नवंबर, सुबह सामने जो दुकानें थी वहां से वो व्हाइट पहना खरीदा। जो व्हाइट तब पहना वो अब तक भी पहना हुआ है। उसके बाद में कभी भी एक दिन भी कभी रंगीन दुनिया में गए नहीं जो संसार की है। अगला नियम इकोनॉमी, अगला नियम है इकोनॉमी। पानी की बचत, इलेक्ट्रिसिटी की बचत, पेट्रोल की बचत, पैसों की बचत। मधुबन में जाते हैं इतना सारा भोजन ले लेते हैं, थोड़ा सा खाते और छोड़ देते हैं। मधुबन में जाते हैं कप भर के चाय लेते हैं, ग्लास भर के, और छोड़ देते आधा, वेस्ट। मधुबन में जाते हैं कमरे में रुकते हैं, लाइट ऑन, एसी ऑन, फैन ऑन, सब कुछ ऑन, वेस्ट। किसका है ये? क्या घर पे हम ऐसा ही करते हैं? लाइट की बचत, इलेक्ट्रिसिटी की बचत, पानी की बचत, यज्ञ के हर चीज की बचत करनी है। यज्ञ का हम पर कम से कम खर्च हो, चाहे लौकिक में रहते हैं, अलौकिक में रहते हैं, चाहे गृहस्थी में रहते हैं, जो पैसा आ रहा है, जो सैलरी आ रही है, वो भी समझना यज्ञ से आ रही है। ये नहीं समझना ये मैं कमाता हूं। हमने एक भाई को देखा, जो भी सैलरी आती है पहले बाबा के ट्रांसलेट के सामने रखते और फिर बाबा से लेते। हमने एक सेवा केंद्र देखा था, उसमें बहने जो भी सामान लाती है पहले बाबा के सामने, सब्जी लाई बाबा के सामने और फिर बाबा से लेते। समर्पण। हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसका है। हम क्यों वेस्ट करें, हमारी वजह से एक पैसा भी वेस्ट ना हो। पैसों का वेस्टेज, पेट्रोल का वेस्टेज, जहां पैदल जाना है वहां पर भी गाड़ी से जाते हैं, जहां चढ़ सकते हैं वहां पर भी लिफ्ट से जाना। हमारा तपस्वी जीवन है। सुख सुविधाएं मिल रही है बहुत अच्छा, पर ना मिले तो कोई फर्क ना पड़े। इकोनॉमी, ना भोजन को वेस्ट करना है, ना पैसों को, और सूक्ष्म में संकल्पों का वेस्टेज, सूक्ष्म में बोल का वेस्टेज। सारे दिन भर बोलते रहते, बोलते रहते, बोलते रहते, बोलते रहते, बोलते रहते, मौन का तो अनुभव ही नहीं है। कहां गया मौन? सबसे ज्यादा ऊर्जा तो मौन में है। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशया। गुरु बैठा हुआ है, हजारों शिष्य सामने है, शिष्यों के मन में संशय है, ना गुरु कुछ बोल रहा है ना शिष्य कुछ पूछ रहे। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, गुरु का व्याख्यान मौन का है। शिष्यस्तु चिन्ह संशय, शिष्यों के संशय अपने आप मौन से ही नष्ट हो रहे। वो पावर, वो शक्ति, वो एनर्जी साइलेंस में है। अगला नियम भोजन, फूड। यहां पर कितनी माता है जो रोज भोग लगाती है? हाथ खड़ा करेंगे जरा, बस। और बाकी माता है खुद ही भोजन बनाती है और खुद ही खा लेती है, और भगवान भूखा 24 घंटे में। अभी ये तीसरी बात बता रहे हैं एज ए होमवर्क जो करनी है। सभी माता है जो भोजन बनाती है, 24 घंटे में एक बार भोग जरूर लगाना है। और भाइयों में से कितने हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं? बहुत सारे हैं। भोग लगाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रयश्यति। हे अर्जुन, मुझे तुम्हारे पंच पकवान 36 प्रकार के भोग नहीं चाहिए, पत्र पुष्प फल तोयम जल, इतना ही मुझे स्वीकार कराओ तो मैं अनन्य भाव से स्वीकार करता हूं। साकार महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, बाप साहूकारों की महफिल में नहीं आते जहां 56 प्रकार के भोग बनते हैं, बाप गरीब की झोपड़ी में आते हैं जहां सूखी रोटी बनती है, और जो अनन्य भाव से बाप को स्वीकार कराते हैं। तो जो कुछ हम बनाए क्या करना है, उसको भोग लगाना है। और जो पैसे से भोजन आ रहा है वो पैसा भी सफेद हो, शुद्ध हो। अगर किसी का शोषण करके 2 नंबर से पैसा कमाया जा रहा है और फिर यज्ञ में लगाया जा रहा है, ऐसा भोजन से कभी शक्ति नहीं आएगी। अगर भोजन कमाने का तरीका ही गलत है, इसको सभी भाई जो बिजनेस में है, जो जॉब करते हैं, ध्यान रखना है। पहला बात। दूसरी बात, भोजन को चौका कहा जाता है भारतीय संस्कृत में। 4 बातें होनी चाहिए उसमें। पहला, पैसा शुद्ध हो, पवित्र धन हो। दूसरा, भोजन बनाने वाले की मनस्थिति कैसी है। क्रोध में बनाया जा रहा है, इच्छा से बनाया जा रहा है कि ये भोजन दूसरे खाए और तारीफ करे कि बहुत टेस्टी था, ये सकाम कर्म हुआ, निष्काम कर्म नहीं हुआ। तीसरा, भोजन में जाति दोष तो नहीं है कुछ, कंकड़ पत्थर बाल ये भी दोष है भोजन का। और चौथा, भोग लगाया कि नहीं लगाया, ये 4 बातें हैं। तो भोजन प्रेम से स्वीकार करना है, धन्यवाद के साथ स्वीकार करना है, चिड़चिड़ेपन के साथ नहीं, दुखी होकर नहीं, इसमें वो नहीं है, उसमें वो नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है, उसमें वैसा नहीं है। मधुबन में आते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं कुछ कुछ लोग, आज भी वही कल भी वही था, हमको ये पसंद नहीं, हम तो वहां से, हम तो साउथ से, हम यहां से, यहां ये है वहां वो है, हमको ये सूट नहीं करता, वो सूट नहीं करता। February 16, 1988 अव्यक्त मुरली, ये ब्रह्मा भोजन दुख भंजक भोजन है, ये भोजन इसमें दुआ है और दवा है, इसका एक एक दाना मोहर के समान है, इसके लिए वेस्ट नहीं करना है भोजन को। मधुबन में हम देखते हैं पार्टी आती है, इतना वेस्ट करती है भोजन, जो खाना नहीं, जो पता है हमको हमने कभी खाया नहीं है, फिर भी इतना भर के ले लेती है और फिर छोड़ देती है वैसे के वैसे। बाजार लगता है जैसे, वहां पर थालियों को ऐसे फेंकती है, चम्मच को फेंकते है, फेंकना नहीं है कोई भी चीज को, रखना है। शांतिवन में माताएं आती है, कमरे में रहती है, जाते समय लॉक लगाकर चाबी घर ले चली जाती है, तोड़ने पड़ते हैं दरवाजे, हर टर्न में दरवाजा तोड़ना पड़ता है, लॉक लगाकर चली जाती है चाबी घर पे, बोझ, आए थे पुण्य कमाने, पाप कमा कर गए, उसके बाद में अगला नियम जी, अर्थात देना, गिविंग, शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं और सहयोग, मदद देना सबको, चाहे किसने कुछ भी किया हो, परंतु हमें सभी को सहयोग देना है, सभी को दुआएं देनी है, सभी की मदद करनी है, ये नियम है। यहां पर बदले का भाव नहीं रखना, इसने हमारे साथ ऐसा किया इसलिए हम ऐसा करेंगे, इसने हमें सहयोग नहीं दिया इसलिए हम भी नहीं देंगे, सभी के प्रति शुभ भावना है। ईश्वरीय परिवार है, अभी अभी जो मुरली चली शांतिवन में, ये क्या है? परमात्मा परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। उसके बाद में अगला नियम एच, एच फॉर होली कंपनी, सत्संग। यह ब्राह्मणों का संगठन सत्संग है, इसको कभी नहीं छोड़ना है। ये यज्ञ किला है, किले से बाहर जाते ही पाप होना चालू हो जाते, विकर्म है। किले के अंदर रहेंगे तो पाप नहीं होंगे, इस सत्संग में रहना है। सेंटर एक सत्संग है। ऐसी भट्टियों का जब प्रोग्राम होता है, चुपचाप केवल आकर भी बैठ गए, केवल आकर बैठे सत्संग में, अपने आप शक्तियां भरने लगेगी, आत्मा में जागृत होगी, अंदर से कुछ नए संकल्प होंगे क्रिएट कि मुझे अब करना है। इसके लिए ऐसे मौके को छोड़ना नहीं है। सेंटर पर कोई प्रोग्राम है, मनसा से सहयोग देना है, वाचा से सहयोग देना है, हर प्रकार से सहयोग देना है, धन से सहयोग देना है। मधुबन में एक बार माताएं आई थी, दादी प्रकाशमणि थे, बहुत पुरानी बात, यज्ञ में कमी थी उस समय, संपन्नता नहीं थी। दादी ने कहा ऐसे ही कि जो माताएं जितना दे सकती है दे दे। सभी माताओं ने कहा नहीं नहीं हमारे पास बहुत गरीब है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। दादी ऐसा वैसा वैसा, दादी का ठीक है ठीक है ठीक है। और वो सारी माता शाम को मार्केट से अपनी ननद बहू बेटी सबके लिए सामान ले लेके आ रही है, तब पैसे हैं, यज्ञ के लिए नहीं है। तो सत्संग, सबसे बड़ा सत्संग है परमात्मा का सत्संग, दूसरा सत्संग है दैवी परिवार का सत्संग, तीसरा सत्संग है दादियों का संग। अब दादियों का संग कैसे मिलेगा? उनकी क्लासेस सुनकर, उनके जीवन को पढ़कर। ऑडियो विजुअल सत्संग, क्लासेस सुनना, रोज एक तीव्र पुरुषार्थ का क्लास सुनना है, सभी दादियों के अनुभव, यज्ञ के इतिहास की कहानियां प्रेरणादायी है। प्रकृति का संग भी सत्संग है। तो सत्संग बहुत सारे रंग है सत्संग के। उसके बाद में नेक्स्ट नियम आय, आय अर्थात इनकल्केशन ऑफ वर्च्यूज, अर्थात दिव्य गुणों की धारणा। जैसे ज्ञान की भट्टी है, जैसे योग की भट्टी है, वैसे गुणों की भी भट्टी करनी है। 36 गुण है, एक गुण को उठाना है और 7 दिन तक उसके ऊपर काम करना है। जैसे अनुशासन, मुझे अनुशासित करना है अपने जीवन को, डिसिप्लिन बनाना है। कहीं के कहीं भटक रहा है जीवन, बैठे हैं, कोई दोस्त आ गया, बातें करने लग गए, 1 घंटा बातों में चला गया, कोई अनुशासन नहीं है। कोई किसी ने कहा चलो घूम के आते, गए और 3 घंटे चले गए, ना ज्ञान ना योग ना कुछ, अनुशासन, कठोर अनुशासन, स्वयं को अनुशासित करना है। अभी अभी जो ओलंपिक में जिसने बहुत अच्छा ये किया सिद्धू, उसने अपना अनुभव बताया था, 8 मास तक आई वॉज विदाउट मोबाइल प्लेयर। डेडिकेशन चाहिए, बिना डेडिकेशन के कुछ नहीं मिलेगा। अनुशासन, तो जैसे दिव्य गुणों, जैसे बाकी भट्टियां है, दिव्य गुणों की भट्टी करनी है, रोज एक गुण उठा लेना है। जैसे आज उठाया हमने डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, एक संकल्प करना है और फिर उसको करके रहना है, छोड़ना नहीं है उसको, जब तक पूरा ना कर लूं रुकूंगा नहीं। छोटी सी बात है परंतु संकल्प कर लेना है, आज्ञा देनी है मन को, ऑर्डर करना है। जैसे आर्मी में नियम होता है, बस वैसे ही मिलिट्री है हम। There is not to do reason why, there is but to do and die. ये नहीं पूछो क्यों, क्या, कैसे, बस करो। अपने मन को ऐसे ऑर्डर कर देना है बीच बीच में। तो डिसिप्लिन, इनकल्केशन ऑफ वर्च्यूज। उसके बाद में नेक्स्ट मर्यादा जे, जे फॉर जर्नी टू मधुबन। यहां से लोग मधुबन में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? बाबा से मिलने। और किस लिए जाते हैं? शिविर में ले जाते हैं या विंग्स के प्रोग्राम में जाते हैं। पर मधुबन में जाना इतना साधारण ना हो जाए कि गए वहां पर और सारा ध्यान इससे मिलू उससे मिलू। और एक नया शब्द अभी अभी हमको पता चला, शांतिवन के बाहर जो है ना मार्केट, उसका नाम पता है क्या है? माया बाजार। माया बाजार। शांतिवन है माया जीत नगरी और शांतिवन के बाहर है माया बाजार। ये खरीदू वो खरीदू, ये लाऊ वो लाऊ, इधर जाऊं उधर जाऊं। गए मधुबन में तपस्या करने, बाबा से मिलन मनाने और सारी बुद्धि यहां वहां भटक रही है। अनुभव इतने सस्ते नहीं है, वैराग्य चाहिए तो ही अनुभव होता है। और फिर सेंटर पर आकर लंबी लंबी कहानियां, हमने ये अनुभव किया और वो अनुभव किया। और बाबा के सामने बैठे थे तो फोन पर बातें चालू थी। और एक नया अभी चालू हुआ, कई समय से देखते हम, उधर भगवान को भोग नहीं लगा, इधर भोग चालू हो गया है खुद का। वहां बैठे बैठे अचानक सैंडविच की खुशबू आने लगती है, कहां से आ रही है? इधर भोग चालू है पीछे। बाबा से मिलने जा रहे हैं तो बाबा से ही मिलना है बस। ये देखू वो देखू, इससे बात करूं उससे करूं, ये करूं वो करूं, वहां क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों करता है वो वैसा क्यों करता है। इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू वॉन्ट पीस ऑफ माइंड रिजाइन एज द जनरल मैनेजर ऑफ द यूनिवर्स। तुम कौन हो? तुम ठेकेदार हो क्या? बाबा कहते मैं ठेकेदार हूं, मैं देखूंगा किसका क्या हो रहा है। हु आर यू टू जज? ये ठीक कर दूंगा वो ठीक कर दूंगा, तुम पहले अपने आप को ठीक करो बस। जे फॉर जर्नी टू मधुबन। तो मधुबन की यात्रा, जब मधुबन जाना है पहले से प्लानिंग करके जाना है। 4 दिन रुकने वाले हैं, 5 दिन रुकने वाले हैं, 5 दिन में मेरा हर दिन का योग का चार्ट कितना होना चाहिए, एकांत कितना होना चाहिए, सारी दिन भर वहां क्लासेस चलती है, क्लासेस सुनते समय कौन सी स्थिति होनी चाहिए, क्लासेस के बाद कौन से नोट्स मैं निकालूं और कैसे उसको रिवाइज करूं, ये सारा का प्लानिंग होना चाहिए। बजाय इसके कि वहां जाकर माया बाजार में घूमते रहते, कुछ खरीदना नहीं है, विंडो शॉपिंग, ये क्या है वो क्या है, ये पर्स कहां से ली, एक्स्ट्रा है क्या, कहां मिलती है सस्ते में। उसके बाद में अगला नियम एल, एल अर्थात लव फॉर वन बाबा, एक बाप से प्यार बस। आज सुबह की साकार मुरली, सारे संबंध, तारे संबंध कैंसर, और ऊपर क्या लिख देना, डेंजर, कौन से शब्दों में, लाल लाल अक्षरों में, एक ही उससे प्यार बस। बहुतों से प्यार करके देख लिया, सब ने धोखा दिया है, इससे प्यार किया उससे प्यार किया, उसको दिल लगाया उसमें दिल लगाया, इसमें बहुत विश्वास किया, सब ने धोखा दिया है आज तक। अब तो ठिकाने पर आ जाए बुद्धि, आज की मुरली में बहुत गाफिल हो गए, अब जागो। इस संसार में कोई भी हमारा, इस वाक्य को अपनी डायरी में लिख के रखना है सबने, इस संसार में एक भी आत्मा एक भी व्यक्ति हमारा सगा नहीं है। सब कैसे है, सौतेले पराए हैं, एक बाप ही सगा है बस। प्यार सबसे करना है, ऊपर ऊपर से हाथ घुमा देना बस, ऐसे ऐसे सौतेली माँ घुमा देती है ऐसे ऐसे, ठीक है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, पर प्यार ऊपर। भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान के लिए प्यार कैसा होना चाहिए, दांत के दर्द की तरह। दांत में दर्द होता है ना, टूथेक, पेन किलर नहीं खाओ फिर देखो क्या होता है, 24 घंटे दांत खींचते रहता है, बात कर रहे ध्यान इधर है, काम कर रहे ध्यान उधर है, बस सब्जी बना रहे ध्यान इधर है, गाड़ी चला रहे हैं, ध्यान उधर ही है, दांत का दर्द खींचते रहता है खींचते रहता है, वैसे प्रभु प्रेम हो, सारे काम करते रहे परंतु ध्यान उसमें, लव फॉर वन बाबा बाबा। उसके बाद में अगला नियम एम, एम अर्थात मुरली चिंतन। मुरलिया बहुत पढ़ ली, मुरलिया बहुत लिख ली, साकार महावाक्य है बाबा के, मुरली क्लास में जाना, बैठना, मुरली लिखना और वापस जाना, यह है पुरानी चाल। ये क्या है? पुरानी चाल। और नई चाल कौन सी है? मनन, चिंतन। मुरली क्लास में गए, डायरी खोली, मीठे बच्चे, प्रश्न उत्तर, फिर डायरी बंद, फिर बाजू में, फिर डोलना चालू, फिर थोड़ा सा झुटका, और फिर अचानक मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, वापस डायरी ली। धारणा के लिए मुख्य सार एक, धारणा के लिए मुख्य सार दो, वरदान, स्लोगन, डायरी बंद। काम पूरा हुआ। और कुछ कुछ माताएं अपनी डायरी सेंटर पर ही छोड़कर जाती है ताकि कल देखेंगे डायरेक्ट। मुरली पूरी हुई, सेंटर से निकले, चप्पल पहनते पहनते महावाक्य गायब, सीढ़ियां उतरते उतरते प्रश्न गायब, घर पहुंचते पहुंचते धारणा के लिए मुख्य सार उड़ गया, नाश्ता बनाते बनाते वरदान पता नहीं क्या था, और नाश्ता करते करते स्लोगन गायब। शाम को पूछो मुरली कैसी थी? बहुत अच्छी थी। तुम क्यों नहीं आए? बहन जी ने इतना सुनाया। अच्छा, क्या सुनाया वो मत पूछना, बस वो डायरी में लिखा है। पहले तो आते नहीं और फिर पूछते हो क्या सुनाया। ये है पुरानी चाल। जैसे सुबह भी बताया, हर मुरली से 5 टॉपिक्स निकालने हैं, सारे दिन भर चिंतन करना है, मनन करना है, अध्ययन करना है उसका। मुरली स्टडी है। अभी अभी 2-3 दिन पहले महावाक्य था, ये स्टडी है, इसको एक दिन भी मिस नहीं करना है, नहीं तो बुद्धि में जो संशय उठते हैं वो दूर कैसे होंगे। ये स्टडी है, भगवान पढ़ा रहा है। बाप ऐसे पढ़ाते हैं, 2016 में अव्यक्तवाणी चली थी शांतिवन, बाप ऐसे पढ़ाते हैं जैसे सारा पढ़ाया हुआ बुद्धि में छप जाता है। छप रहा है कि नहीं? इस ज्ञान को समझने के लिए क्या चाहिए? बर्तन बहुत स्वच्छ चाहिए, सोने का बर्तन चाहिए, शेरनी का दूध है। ऐसे ठहरेगा नहीं ये ज्ञान। कोई कहेगा मैं विकार में भी जाता हूं, मुरली भी सुनता हूं, नॉट पॉसिबल। मुरली चिंतन। अगला नियम एन, एन अर्थात नो। लिस्ट बनानी है बाबा ने कौन कौन सी चीजों के लिए ना कहा है। नो सिनेमा, नो सीरियल। टीवी सीरियल देखते रहते हैं 2-2 घंटा। एक भाई था, वो कहता था कहाँ जा रहे हो? वो कहता था अशोक भाई की क्लास सुनने। अशोक भाई की क्लास? सम्राट अशोक सीरियल आता था टेलीविजन पर, उसकी क्लास। टाइम हो गया कि बेचे नहीं, देखने जाना है, क्योंकि वो सीरियल जो होते हैं ऐसा एंड होते हैं आगे क्या होगा, क्लाइमैक्स में एंड होते, बिल्कुल ऐसे शार्प टर्निंग पॉइंट, आगे देखने के लिए मजबूर हो जाता है व्यक्ति। नो, नो फैमिलियरिटी, नो बॉयफ्रेंड, नो गर्लफ्रेंड। नो की लिस्ट बनानी है अपनी व्यक्तिगत, किस चीज के लिए बाबा ने नो कहा है। और एक होती है सुविधाजनक श्रीमत। बाप ने कहा है जो मिलिट्री में है वो भले कभी कभी मजबूरी में बाहर का खा सकते हैं, ठीक है। अभी मिलिट्री से रिटायर होके 10 साल हो गए, अभी भी खाना चालू है क्योंकि बाप ने कहा है। उल्टा लिया ना श्रीमत को। उसके बाद में ओ अर्थात ऑब्जर्वेंस ऑफ श्रीमत, श्रीमत का पालन करना। श्रीमत क्या है समझना, श्रीमत का पालन करना। स्पार्क में एक किताब आई है श्रीमत, इतनी मोटी है, बड़ी सी श्रीमत। उसकी पीडीएफ अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी, पर हार्ड कॉपी ले लेना जब भी मधुबन जाएंगे तो। श्रीमत उसमें सब कुछ लिखा है, बाबा के महावाक्य थोड़ा चिंतन, बाबा के महावाक्य चिंतन, हर टॉपिक का डिस्कशन है, कपड़े से लेके तो हर चीज के लेके 300-400 चैप्टर्स है छोटे छोटे। श्रीमत शिव बाबा और उसकी श्रीमत, ऐसा टाइटल है उसका। उसके बाद में पी, पी भाइयों के लिए है, प्रिंटिंग ऑफ लिटरेचर। यज्ञ की जो नियमावली है उसमें एक नियम है सेंटर पे आने वाले भाई बहनों के लिए कि बिना बहन जी से पूछे कोई भी लिटरेचर खुद पब्लिश नहीं करना है। खुद ही अपनी किताब पब्लिश करते, खुद ही अपना लिटरेचर पब्लिश करते, खुद ही डिसाइड करते प्रोग्राम कहाँ रखना है, पाम्पलेट्स, बुक्स। ये यज्ञ का नियम है, बिना निमित्त आत्मा के पूछे इस तरह के कोई भी पर्चिया, कोई भी पेपर्स प्रिंट नहीं करने, ये नियम है स्टूडेंट्स का। उसके बाद में क्यू, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी अश्योरेंस। जो भी कार्य करना है वो क्वालिटी वाला करना है, ऊपर ऊपर से दिखावे वाला नहीं करना है। ऊपर ऊपर से बस काम चलाओ, कर दिया और चलो, बहन जी ने कहा ये सेवा करके आओ, इच्छा नहीं है कैसे तो कर दिया और छोड़ के आ गए। क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी अश्योरेंस अर्थात जो भी काम करो वो क्वालिटी वाला हो, मन लगा के किया हुआ हो, फटाफट फटाफट नहीं। जैसे वो माता, सुना होगा प्रदर्शनी समझा रही है, टाइम कम है, कैसे समझा रही है, देखो ये ज्ञान में नहीं चलते हैं, वो चित्र है ना हमारी प्रदर्शनी में, ज्ञान में नहीं चल रहे तो झगड़ रहे और ज्ञान में चल रहे तो एकदम शांतिपूर्व है। ये देखो ज्ञान में नहीं चलते तो रोटी खाते, ज्ञान में आ गए अभी पूरी तल रहे, चलो आगे। चित्र देखा है, चित्र है ना, एक ज्ञान में तल रहे तो पूरी बना रहे, फोकस पूरी और रोटी पर कर दिया, ज्ञान में नहीं थे रोटी, ज्ञान में आ गए पूरी, चलो आगे नेक्स्ट चित्र, ये नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया, अब जाओ। उसके बाद में आर, नेक्स्ट नियम है यज्ञ का, आर अर्थात रिलेशनशिप। एक ब्राह्मण के दूसरे ब्राह्मण के साथ किस तरह के संबंध हो, कड़वाहट ना हो, नफरत ना हो, लगाव ना हो, आसक्ति ना हो, डिटैचमेंट हो, प्रेम हो। सबने सुना होगा, इसके पहले भी सुनाया हमने, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक कहानी है जिसका नाम है शोशीर कविता, बंगाली में द लास्ट पोएम, इंग्लिश में ट्रांसलेशन। उसमें एक कन्या है, एक युवक है, दोनों को आपस में बहुत प्यार है, दोनों प्यार करते। एक जो स्त्री है बहुत अमीर है वो कन्या, और जो पुरुष है वो गरीब है बेचारा। दोनों को आपस में प्यार है, दोनों को शादी करनी है। तो वो कन्या उस पुरुष से कहती है, उस भाई से, कि मैं तुमसे शादी करूंगी पर एक शर्त है। वो कहता है शर्त क्या? शर्त यह है कि शादी के बाद हम एक साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। वो कहता है व्हाट, शादी करेंगे पर एक साथ नहीं रहेंगे? वो कहती है ये झील है ना, तुम उस ओर रहोगे मैं इस ओर रहूंगी, तुम्हारे लिए मैं वहां महल बना के दूंगी और फिर हम बीच में कभी भी मिलेंगे अनइनवाइटेड, तुम उधर से आ रहे मैं इधर से आ रही और मिलेंगे। वो कहता है पर ऐसी कैसी शादी है ये, हम शादी क्यों कर रहे हैं फिर, हमको ऐसी शादी क्यों करनी? वो कहती है मेरी यही शर्त है, शादी करनी है तो ऐसी होगी, तुम उधर रहोगे मैं इधर रहूंगी और हम ऐसे मिलते रहेंगे बीच बीच में। वो कहता है आखिर क्यों, वो कहती अगर तुमको करनी है तो करो, नहीं तो तुम किसी और को और के साथ कर सकते हो, बाकी मेरा तो प्यार केवल तुमसे है और मैं तुम्हारी याद में ऐसी ही रहूंगी जीवन भर। वो तो ज्यादा परेशान हो जाता है, वो कहता है आखिर क्यों? तो वो कहती है जब दो व्यक्ति बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं तो वो जो फ्रेशनेस है उनके संबंधों की वो खत्म हो जाती है। जो दो व्यक्ति बहुत ज्यादा करीब आते हैं, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, नफरत क्रिएट हो जाती है, अवगुण देखने लगते हैं। वो कहती है मेरा और तुम्हारा जो प्यार है वो सदैव ऐसा ही प्यार रहे, द स्पिरिचुअल रोमांस। इसलिए हम दोनों रहेंगे परंतु अलग अलग रहेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग डिफरेंस। घर में रहते हैं परंतु हर एक को स्पेस चाहिए टू ब्रीथ, हर एक को अपना पर्सनल उसकी लाइफ है उसमें इंटरफियर नहीं करना, चाहे पत्नी है बच्चे है कोई भी है, प्रेम करना है पर इंटरफियर नहीं करना है उनकी लाइफ में। अगर पति अपने पत्नी का मोबाइल ही चेक करते बैठे तो झगड़े ही झगड़े होंगे, इंटरफियरेंस नहीं करना। एवरी रिलेशनशिप शुड हैव डिस्टेंस। इस ब्राह्मण परिवार में भी डिफरेंस, इंटरफियर नहीं करना है, किसी के जीवन में कूदना नहीं है। वो क्या करता है, वो क्या खाती है, वो क्या पहनती है, वो क्या करती है, तुमको क्या करना है, व्हाट इज दैट टू यू? अलौकिक संबंध है हम सबके, स्पिरिचुअलिटी उसमें डिविनिटी होनी चाहिए, रॉयल्टी होनी चाहिए, लो लेवल पे उतरना नहीं है जिसमें झगड़े हो। नेक्स्ट नियम एस, एस अर्थात साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, मौन और एकांत। ब्राह्मण जीवनचर्या में मौन के लिए स्थान हो और एकांत निकालना है, चुराना है मौन को। जब भी समय मिले चुप होकर अपनी साधना में मगन हो जाओ, मैं आत्मा हूं, स्पिरिचुअल ड्रिल रूहानी ड्रिल करने में लग जाओ, एकांत में बैठ के मनन करो, चिंतन करो, किताबें हैं इतनी सारी पढ़ो, यज्ञ का इतना सारा लिटरेचर है सारा पढ़ के हो गया, ज्ञानामृत पढ़ के हो गया, वर्ल्ड रिन्यूअल पढ़ के हो गया, प्यूरिटी पढ़ के हो गया, जगदीश भाई की लिखी हुई सारी किताबें पढ़ के हो गई जो शांति से बैठे है, स्पार्क की इतनी सारी किताबें, अव्यक्त मुरली, ऐसे कितने हैं इस सभा में जिसकी सारी अव्यक्त मुरलियां पढ़ के हो गई 69 से लेकर 2016 तक। चलो ये दूसरा काम है अब सबके लिए। टोटल 1100 अव्यक्त मुरलियां है 1969 से स्टार्ट करके 2016 तक, जब तक बाबा आ रहे थे, टोटल 1100 मुरली। शांति से बैठे क्या सारी मुरलियां पढ़ के हो गई? पहले लेट एडमिशन ली और फिर बाद में कहोगे हाँ ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये कैसे आ गया प्रश्न? अरे आउट ऑफ सिलेबस नहीं, बाबा कहेगा गो एंड रेफर 1973 अव्यक्त मुरली में उसका उत्तर है, हमने पढ़ी नहीं है, लेट एडमिशन ली है, शांति से बैठे है, सारी मुरलियां कहां पढ़ के हुई है? अभी ये महाप्रोजेक्ट है, इसको चालू करना है। ये तो तब होगा जब एटलीस्ट हर दिन एक अव्यक्त मुरली पढ़ी जाएगी। वो साकार जो चल रही है वो तो है ही है, पर बहुत लेट एडमिशन, फीलिंग हो कि हमने लेट एडमिशन ली और समय बहुत कम है, तड़प हो तड़प आग। पुरुषार्थ में जब तक तड़प नहीं आएगी आगे नहीं बढ़ेंगे। एक अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ अर्थात तड़प। कल की जो अव्यक्त मुरली चलने वाली है, अब नहीं तो कब नहीं, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात अब नहीं तो कब नहीं, यह है तीव्र पुरुषार्थ। मौन एकांत। उसके बाद में टी, टी अर्थात ट्रस्टीशिप, यह नियम है। पैसे आ रहे पैसे जा रहे मेरा कुछ भी नहीं है, बाबा का है सब कुछ। अनासक्त, जैसे बैंक का क्लर्क, इतने लोग पैसे डिपॉजिट करते विड्रॉ करके चले जाते, उसको दुख नहीं होता है, उसको अपनी सैलरी मिलती है बाद में, मेरा नहीं है। ट्रस्टीशिप, ये घर शिव बाबा का, ये सब कुछ शिव बाबा का है, हमारा तो, हम तो संभालने के लिए हमको दिया गया है बस, ये कार शिव बाबा की, ये ऑफिस शिव बाबा का, हमारा नहीं है, बाबा का है। उसके बाद में यू, यूजिंग ज्ञान इन प्रैक्टिकल वे, जो ज्ञान मिला है अब उसको प्रैक्टिकल में प्रयोग करना है, खाली ज्ञान रखने के लिए नहीं है, शोभा की वस्तु नहीं है। वी, विजिट टू अनदर सेंटर, सेंटर के सभी स्टूडेंट के लिए नियम है, अगर एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाते हैं तो निमित्त बहन की चिट्ठी लेटर लेकर जाना है। ऐसा नहीं हम तो जानते हैं उनको, हमें किसी लेटर की जरूरत नहीं है। यहां तक कि मधुबन में भी कुछ कुछ लोग डायरेक्ट आ जाते हैं, हमारी बहुत पहचान है, आ जाओ पहचान, अनुभव भी नहीं होगा कुछ। ये नियम है, एक सेंटर से दूसरे सेंटर रहने जा रहे हैं, टेक अ लेटर एंड देन गो। डब्लू, डब्लू अर्थात वॉश आफ्टर मोशन, ये तो सब फॉलो करते ही है, स्नान करना मोशन के बाद। उसके बाद में एक्स अर्थात एक्सरे, एक्सरे अर्थात सेल्फ चेकिंग ट्वाइस अ डे। बीच में के रह गया था, के अर्थात कीपिंग चार्ट, के अर्थात कीपिंग चार्ट, चार्ट को रखना। एक्स अर्थात एक्सरे, एक्सरे अर्थात रात को सोने से पहले अपना ही एक्सरे देखना, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है, सब ठीक ठाक तो रहा दिन भर। उसके बाद में वाई अर्थात योगा ट्वाइस अ डे, सुबह अमृत वेला तो शक्तिशाली कर लिया, पर नियम ये बनाना है कि नुमा शाम का योग भी उतना ही शक्तिशाली हो। कोई जॉब कर रहा है, कोई ट्रैवल में है, कोई बिजनेस में है, जहां कहीं पर भी हो, जैसे ही 6:30 बजते हैं या 7 से 7:30 या 6:30 से 7:30, एक घंटा या आधा घंटा, जहां पर भी है योग युक्त हो जाना है। और लास्ट 26वां नियम, जेड, जेड अर्थात झील, झील अर्थात उमंग उत्साह। जो भी सेवा करो, जो भी कार्य करो, ब्राह्मण जीवन अर्थात उमंग उत्साह का जीवन, दुखी हो के मर मर के नहीं करना है कुछ। तो ऐसे टोटल 26 नियम है, फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ए फॉर अमृत वेला, जिनका अमृत वेला नहीं हो रहा है, हमने बताया किताब पढ़ना चालू करना है, एक मास तक डेली एक ही किताब पढ़ो। बी फॉर ब्रह्मचर्य, जिसका ब्रह्मचर्य हिल रहा है, डगमग हो रहा है, चिंतन की आवश्यकता है, क्यों, कारण को ढूंढो। सी फॉर सेंटर एटमॉस्फियर, सेंटर का वायुमंडल हमें शक्तिशाली बनाना है। डी फॉर ड्रेस, किस तरह का ड्रेस हम पहनते हैं, क्या ऐसा ड्रेस है कि जिससे दूसरों को लगे ये योगी है, या दूसरा हमारे शरीर की तरफ आकर्षित होता है वो ड्रेस से। ये सारी दुनिया शरीर के इर्द गिर्द घूम रही है, सारी फिल्में, सारे नॉवेल्स, सारी मीडिया, सारे उपन्यास, सब कुछ शरीर बीच में है, सारी दुनिया डोल रही है शरीर के इर्द गिर्द, शरीर, शरीर का प्रदर्शन, यही है संसार। ई, इकोनॉमी, कुछ भी वेस्ट ना जाए। एफ फूड, भोग लगाना है जो नहीं लगाते। जी गिव लव, गिव हैप्पीनेस, गिव गुड विशेस, गिव ब्लेसिंग्स। एच होली कंपनी अर्थात सत्संग। आई इनकल्केशन ऑफ वर्च्यूज अर्थात दिव्य गुणों की धारणा। जे जर्नी टू मधुबन, पहले से ही प्लानिंग करनी है मधुबन जाने की, 4 दिन जाने वाले हैं, क्या क्या करना है वहां जाके, यहां बैठकर प्लानिंग करनी है अभी, ऐसे ही चले गए और ऐसे ही टाइम वेस्ट करके आ गए घूम घाम के। के कीपिंग चार्ट, जो लोग चार्ट नहीं लिखते हैं वो लिखना चालू करें, और हर दिन का चार्ट अपना एक बनाना है खुद। और सबसे अच्छी विधि हमें जो लगती है, सुबह मुरली सुनते सुनते ही एक छोटा सा चार्ट वहीं पे तैयार कर लेना, हर दिन का नया चार्ट हो, और रात को सोते समय या तो भरो या तो बाबा को सुनाओ। कई लोग कुछ दिन भरते फिर छोड़ देते, बेस्ट है कि बाबा को सुना देना, या जो चार्ट खुद बनाया है सुबह उसको खोल के उत्तर देना और बाबा को बताना और फिर सोना। के एल लव फॉर वन बाबा, एक बाप दूसरा ना क्यों कोई, बाकी सब सौतेले हैं, यहां पर सगा एक वही है हमारा। एम मुरली चिंतन, पांच टॉपिक्स निकालने हैं मुरली से, चिंतन करना है। एन नो की लिस्ट निकालनी है, कौन सी चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी है, स्टॉप कैंसल, अपने आप को आदेश देना स्टॉप स्टैच्यू। नो मीन्स नो। ओ ऑब्जर्वेंस ऑफ श्रीमत। पी प्रिंटिंग ऑफ लिटरेचर। क्यू क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस। आर संबंध रिलेशनशिप्स, सारे संबंध को डिवाइन बना देना है अलौकिक। एस साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, मौन और एकांत, व्यस्त दिनचर्या से मौन को चुराना है। एस टी ट्रस्टीशिप, ट्रस्टी का भाव लाना है, मेरा नहीं है बाबा का है। एक बार ब्रह्मा बाबा ने कुछ ऐसी बात बोल दी थी पाकिस्तान के लिए जो थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल थी, तो कुछ बाबा के बच्चे थे जो थोड़े पत्रकार जैसे थे, तो बाबा को बताया बाबा आप ना ऐसी बातें मत बोला करो सेंसिटिव इश्यू है। बाबा ने कहा हाँ ठीक है मैं शिव बाबा को बता दूंगा अगली बार से ऐसा ना बोले। कितना डिटैच है, उसमें भी डिटैच है। टी यू यूजिंग ज्ञान इन प्रैक्टिकल वे, ज्ञान को यूज करना है। वी विजिट टू अनदर सेंटर, लेटर के सिवा नहीं जाना है। डब्ल्यू वॉश आफ्टर मोशन। एक्स एक्सरे, अपना ही सेल्फ चेकिंग करनी है। वाई योगा ट्वाइस अ डे, ऐसे कितने लोग हैं जो नुमा शाम का योग मिस नहीं करते, जरा हाथ खड़ा करेंगे। नुमा शाम का, अमृत वेला नहीं, कई सारों ने नहीं उठाया। जितना महत्व अमृत वेले का है उतना ही नुमा शाम को भी देना है। जो अनुभव अमृत वेला होता है वैसा ही अनुभव प्रभु प्रेम का, शरीरीपन का, सर्व संबंधों का अमृत नुमा शाम भी हो। वाय एक्स वाय जेड, लास्ट है झील। झील अर्थात उमंग उत्साह। तो कितने नियम हो गए, 26 नियम, 26 इंग्लिश के अल्फाबेट्स है जिस पर ये 26 नियम बनाए हुए हैं। अपनी डायरी में नोट करके रखना है और हर दिन बीच बीच में रिवाइज करते रहना है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।
प्रभु।